कारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो दक्षिणान्यसीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासियत्थं गणकरदेवेहि गन्तियं समं प्रणमामि भक्तिजुतो सुजना नमो वयं शिरसा ईशाई वंते सुदभक्ति गाओ सगो को दसालोचिम अंगो वंग पहिन्ने पाहुने परियम्मि सुत पणिमाणि उभुव गए चूलिया जय सुत तय द्विदम काह्यम सहनिच कालमंति में पूजि में वंदामि नमस्वामी दुख को कम खो वही लाओ सुगे यमनम समाय मनम जन संपत्ति गोमंत्रम अत नमोस्तु पूर्वाणी श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति कर सुगम करो भावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण संभगे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुके कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंति संसार सायरम घोरम शिन्नन्ति अच्युकम्बं जन्नं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका ईशाई वन्ते ऐरिभक्तिकाौ सगो को दसालोचिं समनानुसमदुन्दसमचरिजुतानं पञ्चविहाचारणम् ऐर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशानं मध्यायानं किरणगुणपानन्दयानं सुभसाहूनं सयानिष्कालमन्त्रिमि पूजयमि वन्दामि नमन्सामि दुःखो को कमुखो वैलाओ सुगेयुम्नं समायुम्नं जिनुं संपत्तिगो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य समंत भद्र स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज ये रत्न करंडक शावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों ये बात सीखी है कि अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा और उनके सानिध्य में आकर के हमें अपने परिणामों की निर्मलता बनानी पड़ेगी और वो परिणामों की निर्मलता सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा है उसके द्वारा हो। श्रद्धा हमारे परिणामों को निर्मल करने में सहायक होती है क्योंकि श्रद्धा के साथ ही ज्ञान भी हमारे जीवन में आता है और तदनुरूप हम आचरण करते हैं तो वह आचरण भी हमारे परिणामों की निर्मलता के लिए है। इस तरह हम देखें तो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और श्रद्धा और ज्ञान के साथ किया जाने वाला आचरण, ये सब हमारे परिणामों को निर्मल करते हैं और यही परिणामों की निर्मलता हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। हम सब अपने परिणामों के बारे में स्वयं जानते हैं। वो परिणाम हमारे दूसरे को मालूम पड़ें या ना पड़ें पर स्वयं तो हम अपने परिणामों को हमेशा टटोलते रहें, देखते रहें कि परिणाम हमारे कैसे हैं। एक मंदिर आने वाले व्यक्ति के परिणाम और एक मंदिर नहीं आने वाले व्यक्ति के परिणामों में अंतर तो होना चाहिए, होता होगा अंतर। और यदि हम मंदिर आते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी हमने पाया है, इसके बाद भी अगर हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आती तो हमें क्या करना है? हमें अपनी उस सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य को और अधिक अच्छा बनाना। पिछले दिनों हमने ये बात समझी थी कि जिस व्यक्ति का कोई प्रयोजन ना हो वो व्यक्ति राजा की सेवा क्यों करेगा। इसी तरह जिस व्यक्ति का कोई प्रयोजन ना हो वो धार्मिक कार्य क्यों करेगा। कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा। जब हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य लिया है तो हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है परिणामों की निर्मलता। जब हमने सच्ची श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त किया है या हम आचरण अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, व्रत नियम संयम हम ग्रहण करते हैं, तब भी हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन तो राग द्वेष की कमी है, क्योंकि राग द्वेष की कमी होने का ही नाम तो परिणामों की निर्मलता है। कषायों की मंदता को विशुद्धि कहते हैं और कषायों की तीव्रता को संक्लेश कहते हैं। विशुद्धि और संक्लेश इन दोनों के द्वारा ही परिणामों को जाना जाता है। परिणाम निर्मल हैं अर्थात कषायें मंद हैं, विशुद्धि बढ़ रही है। अब विशुद्धि भी कैसे बढ़ेगी? तो जैसी जैसी निर्मलता आएगी, जैसी जैसी कषायें घटती चली जाएंगी उतनी विशुद्धि आएगी और उतने ही शुभ कर्मों के लिए बंद होगा, अशुभ कर्मों की उतनी ही निर्जरा होगी। अगर इस दृष्टि से विचार करें, बंध और मोक्ष का भी हमें साथ साथ विचार करना चाहिए। हमारे परिणामों की निर्मलता हमें संसार से मुक्त करती है। हमारे परिणाम बिगाड़ करके ही हम अपने संसार को बढ़ा लेते हैं। ये बहुत सीधा सीधा सा गणित है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक व्यक्ति था तो उसके मन में आया कि वो किसी साधु से जाकर के पूछे कि संसार क्या है और मुक्ति क्या है, कैसी है, कोई स्वरूप होगा इसका, बंध का क्या स्वरूप है और मोक्ष का क्या स्वरूप है, कैसे मैं इस संसार से अपना कल्याण करूं। उसके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई, वो व्यक्ति साधु के पास पहुंचा। उसने साधु जी से कहा कि मुझे समझाएं कि संसार का बंधन कैसा है और मुक्ति कैसी है। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले एक काम करो, वो जो सामने एक पेड़ लगा हुआ है, साधु जी की कुटिया के सामने लगा था, तो वो जो पेड़ लगा है उस पेड़ के पास जाओ, उसे गालियां देना, उसके फल तोड़ करके नष्ट करना, फूलों को भी तोड़ करके इधर उधर तितर बितर कर देना, जितना हो सके उसे मार पीट करना उस पेड़ को। उसने कहा ठीक है भाई। अब जब साधु जी कह रहे हैं, जब आप तो दे नहीं रहे और ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है करते हैं। जा करके उसने पेड़ को गालियां दी, उसके फल फूल तोड़े, नष्ट किए पेड़ को, लाठी से मारपीट भी करी। वापिस आया तो साधु जी ने कहा कि जाओ विश्राम करो। शाम को लौट के आया तो विश्राम करने लगा, थका हारा, मन उसका बहुत उचाट था, मन अच्छा नहीं था। दिन भर जो है इस तरह का काम करने के बाद लौटा तो मन अच्छा नहीं था और बामुश्किल जो है नींद भी ठीक से नहीं आई। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने कहा कि अब जवाब दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आज ये काम और करो, उसी पेड़ के पास जाओ और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो और जो कुछ भी नष्ट किया है उसे संभालो, आसपास जो टूटे फूटे फल फूल पड़े उनको झाड़ पहुंच के जरा अच्छा तो करो। वो गया और उसने दिन भर बहुत ग्लानि तो थी पहले दिन की, तो क्षमा भी मांगी, साफ सूफ किया, पेड़ को सहलाया, उसको ठीक ठीक पानी दिया, जो कुछ भी हो सकता था दिन भर किया। शाम को लौटा तो कहा कि अब जवाब दो। उन्होंने कहा कि अभी तो विश्राम करो। आज तो उसका मन बहुत प्रफुल्लित था, बहुत खुश था, वो अच्छे से सोया। दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर उसने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब आपने दिया नहीं, दो दिन हो गए। तो उन्होंने कहा कि आज देता हूं, बताओ पहले दिन जब तुमने उस पेड़ को नष्ट किया, मारा पीटा, तो कैसा लगा? उसने कहा अच्छा नहीं लगा, मुझे तो रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई, तो फिर दूसरे दिन तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पेड़ की बहुत मदद की, पानी दिया उसको, अपनी गलती की क्षमा भी मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, रात में ठीक से मैं सो सका। तब साधु जी ने कहा कि देखो, पहले दिन तुमने संसार के बंधन का उपाय किया था, यही बंधन है। तुम जब किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा करते हो तो स्वयं ही अपना मन खराब करके अपने लिए संसार निर्मित कर लेते हो, अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन तुमने कुछ अच्छा कार्य किया, उससे तुम्हारा संसार तो नहीं बढ़ा लेकिन संसार से मुक्ति भी नहीं मिली, संसार बढ़ा नहीं है, अच्छा लगा, दिन अच्छे से कट गया, रात भी अच्छे से सोए हैं। और सबसे बड़ी चीज, उस वृक्ष ने क्या कहा, पहले दिन कुछ कहा क्या या दूसरे दिन कुछ कहा? वृक्ष ने तो पहले दिन भी कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, बस पहला दिन तुम्हारा बंध का था, पहला दिन तुम्हारा पाप का था, दूसरा पुण्य का था, और वृक्ष ने कुछ नहीं कहा है, वही वास्तव में मुक्ति का उपाय था। दोनों के बीच हम समता परिणाम रखेंगे तो मुक्ति होगी, अशुभ से बच करके शुभ में लगेंगे, और जब हम समता परिणाम रखेंगे तो शुभ और अशुभ दोनों से पार हो जाएंगे, यही तो तुम्हारे मुक्ति का उपाय है। अपने परिणाम बिगाड़ के हम अपना संसार बढ़ा लेते हैं, अपने परिणाम संभाल करके हम अपना संसार जो है घटा लेते हैं, और परिणामों में अगर अच्छा बुरा कुछ ना हो तो हम संसार से पार भी हो सकते हैं। यही तीन बातें अपन को समझने की है। परिणाम बिगड़ते हैं जिन चीजों से, उन चीजों से बचना, जिन चीजों से परिणाम संभलते हैं उन्हें ग्रहण करना, और फिर देखना कि अब मुझे न ग्रहण करना है न त्याग करना है, मुझे तो अपने आत्मा में स्थिर रहना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो अपने आत्मा की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। इतना ही इसमें अपने को समझने का है, अपने जीवन में ये बात अपने को समझ में आ जाए। वैसे तो इस संसार में कुछ भी करते जाओ इस संसार से बच नहीं सकते, इसलिए कोशिश तो ये करें कि कुछ ना करना पड़े। कुछ ना करना पड़े तो ऐसे तो दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो ज्ञान ध्यान में लीन व्यक्ति होगा तो वो कुछ नहीं करेगा संसार का काम, या फिर कोई निठल्ला आदमी होगा। तो वैसा नहीं अपन को बनना, हम सब कामों से उपरत हो करके ज्ञान ध्यान में लीन हो गए हैं, अपने ही आत्मस्वरूप में लीन हो गए हैं, तो वो स्थिति तो सबसे ऊंची है। लेकिन अगर कुछ करना पड़े, बिना करे कुछ चले नहीं, तो क्या करना? जिससे परिणाम निर्मल होवे वो करना, जिससे परिणाम बिगड़े उससे बचने की चेष्टा करें। उसके परिणाम पहले दिन कैसे बिगाड़े थे, दूसरे दिन उसने संभाले, इस तरह परिणामों को अगर कुछ करना पड़े तो फिर हम अपने परिणामों को संभालने का काम करेंगे, और अगर अपने परिणाम संभल गए तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, फिर तो अपने आत्मा में लीन होना है। यही प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की है, प्रवृत्ति ऐसी करना जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाए, और जब निवृत्ति आ गई तो फिर क्या प्रवृत्ति, क्या शुभ प्रवृत्ति, क्या अशुभ प्रवृत्ति, पहले अशुभ प्रवृत्ति से बच करके शुभ प्रवृत्ति करना, फिर निवृत्ति अगर प्राप्त हो गई तो ना अशुभ प्रवृत्ति है ना शुभ प्रवृत्ति है। हम जो है पहले प्रतिक्रमण कर लिया, हमने दिन भर जो भी अपराध किया उसके लिए क्षमा मांग ली, अब क्षमा मांग ली, अपने आत्मा में लीन हो गए, सामायिक में बैठ गए, तो अब कुछ नहीं कर रहे, अब ना अच्छा कर रहे ना बुरा कर रहे। तो जब भी करने का अगर हमारे अंदर विचार आए तो बुरे से बच करके अच्छा करना। देखो, अच्छा करने के लिए बुरा छोड़ना भी आवश्यक है। हम ये सोचें कि नहीं हम अच्छा कर लेंगे तो बुरा अपने आप छूट जाएगा, छूट तो जाएगा पर संकल्प करना पड़ता है। बुरा छोड़ने का संकल्प करके ही हम अच्छा कर पाएंगे, और फिर अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठने की स्थिति तो बहुत विरले ही किसी महामुनि के ही होती है। अपने को तो दोनों में से ही चुनना है, अच्छे और बुरे में से क्या चुनना है, तो अच्छा। लेकिन अपन के साथ मुश्किल ये है कि अपन करते तो बुरा हैं और फल चाहते हैं अच्छा। अपनी सारी कोशिश होती है कि फल अच्छा मिले चाहे हम जैसा करें, तो कहते हैं अगर फल अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करना भी पड़ेगा। यहां संसारी जीव पाप तो चाहता है लेकिन पाप का फल नहीं चाहता, ये संसारी जीव पुण्य करना नहीं चाहता लेकिन पुण्य का फल तो चाहता, ऐसा ही अपन का स्वभाव बन गया है। पाप करते हैं लेकिन पाप का फल नहीं चाहते, और पुण्य करते नहीं है पर पुण्य का फल चाहते कि मिल जाए, सब सुख सुविधा भी मिल जाए, सुख मिल जाए। यही अपने को समझने की चीज है कि हमें कोई क्रिया करना है, प्रवृत्ति करना है, तो पहले अशुभ प्रवृत्ति को तो संकल्प पूर्वक त्याग करना है, शुभ प्रवृत्ति को हमें स्वीकार करके और निवृत्ति की तरफ जाना है। ऐसी शुभ प्रवृत्ति जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जावे, वो शुभ प्रवृत्ति परंपरा से निर्वाण का कारण बनती। इसी को चाहे जिस भाषा में कहो, इसको ऐसे कहो कि वे सारी पुण्य की क्रियाएं जो सच्ची श्रद्धा के साथ की जाती हैं, वे सब परंपरा से निर्वाण का कारण होती। और सांसारिक आसक्ति से कोई व्यक्ति पुण्य करे तो वो उसका पुण्य उसको संसार की सुख सुविधा दे करके उसी में रंजायमान कर देता है। इसलिए कहते कि भैया ऐसे पुण्य से बचना जिससे और संसार आपका बढ़ जाए। संसार घटाने के लिए अगर हमने पुण्य के कार्य किए हैं तो वे पुण्य के कार्य हमारे लिए संसार घटाने में सहयोगी होंगे। इस बात का अपन विचार करके आगे व्रत नियम, जब भी व्रत नियम की बात अपने जीवन में आवे तो अपन को पहले ध्यान रखना कि प्रयोजन क्या है। मेरा प्रयोजन उन व्रत नियम के द्वारा आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए है, अपने राग द्वेष को घटाने के लिए मुझे व्रत नियम लेना है। तो अगर व्रत नियम लेने के बाद भी राग द्वेष न घटे तो अपने व्रत नियम संयम को दोष नहीं देना, बल्कि हमने व्रत नियम की ठीक ठीक आराधना नहीं कर पाई इसलिए कम नहीं हुए। अब मैं अपने व्रत नियम की और अच्छे से आराधना करूंगा, उनमें जरा और निर्दोष बनाऊंगा ताकि मेरे राग द्वेष घटे, क्योंकि भगवान ने तो व्रत नियम संयम के द्वारा राग द्वेष घटाने के लिए ही हमें उपदेश दिया है। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता होती। मैं अपने राग द्वेष घटाने के लिए, मेरा प्रयोजन राग द्वेष घटाने का है, इसलिए बाह्य में पांच अणुव्रत या महाव्रतों को अंगीकार करता हूँ, पांच पापों का त्याग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे भीतर राग द्वेष घटे, ये हमारा प्रयोजन है। इतना स्पष्ट अपन को हो गया। पांच अणुव्रत हैं, तीन गुण व्रत हैं, चार शिक्षा व्रत, ये श्रावक के 12 व्रत हैं। श्रावक को अपने जीवन में इन 12 व्रतों को अंगीकार करने के भाव तो बनाना ही चाहिए। और पांच अणुव्रत हमने आपसे कहा था कि बड़ी आसानी से लिए जा सकते हैं, परिग्रह का परिमाण भी ज्यादा कठिन नहीं है। आज की तारीख में जितनी जो चीजें हैं तो वे सब हमारी, और इसके बाद जो और ग्रहण करेंगे तो हम ग्रहण ही नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो इसमें से चीज हम अलग कर देंगे तब हम ग्रहण करेंगे, हम त्याग पूर्वक ग्रहण करेंगे। ग्रहण तो करे बिना बनेगा नहीं काम, तो क्या करें, तो कहते जितना ग्रहण उतना ही त्याग। वैसे तो विनोबा भावे ने इस चीज को ऐसे लिखा, बड़ा मजा आता है, उन्होंने लगता है कि इन सब चीजों को जैन धर्म की पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा कि H2O, विज्ञान कहता है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है, तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही करो, त्याग दो भोग एक, ऐसा इक्वेशन बना लो, H2 की जगह पर त्याग दो और O की जगह पर भोग, दुगना त्यागूं तो आधा ग्रहण करूं, दुगना त्याग करो तो आधा ग्रहण करो, त्यक्तेन भुंजीता, वेद में भी ये बात लिखी, त्याग पूर्वक ही भोग किया जा सकता। जो व्यक्ति ग्रहण ग्रहण ही करता है, त्याग नहीं करता है, वो अपने जीवन में नष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई आत्म संतोष नहीं मिलता। अपन अगर त्याग करके ग्रहण करते हैं फिर उस ग्रहण का भी आनंद आता है। इसलिए जब भी हम श्रावक के लिए लिखा हुआ है कि वो अणुव्रतों को ग्रहण करता है, तो अणुव्रतों के माध्यम से ग्रहण तो कम होता है, त्याग ज्यादा होने लगता है, क्योंकि फिर संतोष हो जाता है तो चीजें बहुत मालूम पड़ने लगती, तो भैया अपने काम की नहीं और दूसरे को दे। जब अपन को 10 ही रुपए चाहिए थे हैं और अपने पास 15 आ गए तो जी 5 तो ज्यादा हो गए, और अपनी आकांक्षा होती कि चाहे जितनी आ जावे उतनी हम आए, तो फिर कहूं त्याग करने की भावना बनेगी नहीं। अपन ने अपनी सीमा बना ली कि भाई 10 हमें संतोष 10 रुपए में है, तो ठीक है जिस दिन 15 हो जाएंगे तो 5 हम दूसरे को दे देंगे, और अगर हमें संतोष 15 में भी नहीं आओ, 50 में भी नहीं आ, और जितने जाए आ जाए उतने में भी संतोष नहीं आ, तो भैया फिर तो कोई उपाय ही नहीं। फिर तो चीज के ग्रहण से भी लाभ नहीं हुआ और त्याग तो कर ही नहीं पाए। ऐसा सीधा सा गणित श्रावक के लिए है कि वो ग्रहण करता है और ग्रहण किए बिना श्रावक का चलता नहीं। त्याग वो कम कर पाता है, ग्रहण ज्यादा करता तो उसको शिक्षा देते हैं कि ठीक है तुम्हें ग्रहण करना सो करो, मनो उसके साथ में कम से कम उतने ही त्याग भी करो जितना ग्रहण किया उतने ही त्याग। अब जैसे 100 जोड़ी कपड़ा रखे अपने पास, इसे ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक। अब 100 अपने पास है ही, अब वो ले आना है अपन को, तो क्या करो इसमें से निकालो ले आओ, कोई बात नहीं ग्रहण कर लो, एक जोड़ी और नए ले आओ, मनो एक जोड़ी अलग करो। भी 100 के 100 तो रहो ही चाहिए, उसमें कोई 101 नहीं होए। इतना नहीं कर सकते हैं, इतना तो आसानी से वैसे तो होना ये चाहिए कि एक लाऊंगा तो 2 हटाऊंगा, 2 लाऊंगा तो 4 हटाऊंगा, दुगना होना चाहिए। नहीं होता है तो उतना तो कम से कम रख ही लेंगे, क्या बढ़ाएंगे नहीं, अब तो घटाने की प्रक्रिया है, तो लाऊं तो उसे निकालूं भी घटाऊं भी। ऐसा आसानी से अणुव्रत और 3 गुण व्रत, अणुव्रतों की वृद्धि के लिए जो व्रत ग्रहण किए जाते हैं वे गुण व्रत कहलाते हैं। मुनियों के जीवन की शिक्षा लेने के लिए श्रावक जो व्रत ग्रहण करता है वे सब शिक्षा व्रत कहलाते हैं। इस तरह 12 व्रत हैं। पहला अणुव्रत कौन सा है, तो अहिंसा अणुव्रत है। अहिंसा का अर्थ क्या है भैया, हिंसा नहीं करना, दूसरे के प्राणों का घात नहीं करना। प्राण किसे कहते हैं, कहते हैं कि जीवन में 10 प्राणों के संयोग का नाम ही जीवन है और प्राणों के वियोग का नाम ही मरण है। प्राणातिपात, प्राणातिपात का अर्थ है दूसरे के प्राणों का वियोग कर देना। अब वे प्राण कितने हैं जरा विचार करो, अपन तो सोचते हैं कि दूसरे के प्राण ही निकल गए जब उसका मरण हुआ, अरे नहीं भैया, प्राण 10 हैं और 10 प्राण संगी पंचेंद्री के हैं, उसमें से किसी भी प्राण का आपने घात किया है तो वो सब हिंसा कहलाएगी। चाहे शरीर से किया हो, चाहे वचन से किया हो, चाहे मन से किया हो, चाहे वचन से कराया हो, चाहे मन से कराया हो, या किए हुए की अनुमोदना की हो, इस तरह कृत कार्य तो अनुमोदना सभी प्रकार से मन वचन काय से इन चीजों का त्याग करना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं, अपनी भी हैं और दूसरे की भी हैं। अब इन इंद्रियों का घात कैसे होता, कहते इंद्रियों से अधिक काम लेना ये भी तो उसका घात है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता अपना। अपने स्वयं की इंद्रियां और दूसरे की 5 आंख जो है देखने के लिए मिली हुई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दिन भर जो है और देख ही रहे हैं, अपनी इच्छा से देख रहे हैं। आंख से कोई चीज दिख जाना अलग है और उसके देखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना अलग बात। और बुरी चीज क्यों देखें, आंखें अच्छी देखने के लिए मिली हैं। अर्थ मेरा ये है कि अगर हम अपनी 5 इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करते हैं तो समझना कि हम हिंसा कर रहे हैं। अपनी 5 इंद्रियों का सदुपयोग करना, मेरी आंख क्यों मिली है, भगवान आपका रूप देखूं, सबसे पहले आंख खुले सुबह सुबह तो आपका ही दर्शन हो, मेरे हाथ आपकी पूजा करें, या कि दान दें, दान हाथ की सार्थकता तो दान देने में है, मेरे कानों में आपके वाणी का वाणी ही मुझे प्रवेश करे, मुझे जिन वाणी मेरे कानों को पवित्र करे, मेरी नाक जो है क्या सूंघे, धर्म का जो आनंद है वो ग्रहण करे। यहाँ पर तो अब गंध भी नहीं आती, अब तो सूखी सूखी सब चढ़त है, सुगंध को भी कोई काम ही नहीं कि अपन को कौन देना, मंदिर में घुसे और अच्छी गंध आवे कि हाँ दीप धूप की गंध आई है। खैर हम ये नहीं कह रहे आप नहीं तो भयाने आप जो ही करण लगो और फिर हमारा नाम लगाओ कि महाराज ने कही थी, मगर एक कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि कौन सी गंध, हम तो दुनिया के सेंट और शैम्पूज और कौन कौन सी गंध लेते हैं, अरे मंदिर की भी एक विशेष प्रकार की गंध होती है, आते ही साथ जो है वातावरण बदल जाता कि हाँ मंदिर में आ गए। ऐसे हम अगर चाहें तो अपनी 5 इंद्रियों को पवित्र बना सकते हैं। इंद्रियों की पवित्रता से ही हम अपने जीवन में अहिंसा ला पाएंगे। इंद्रियों का दुरुपयोग करने में भी हिंसा है, अपनी होवे चाहे दूसरे की हो। अब फिर मन वचन काय जो 3 बल मिले हैं तो मन वचन काय का भी सदुपयोग करना, मन से उपद्रव नहीं करना, वाणी ऐसी नहीं बोलना, शरीर की ऐसी क्रिया नहीं करना, इन मन वचन काय 3 प्राणों का सदुपयोग अपने भी और दूसरे के भी। और आयु और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का अवरोध नहीं करना और आयु प्राणों की जिस उदीर्णा होती है उन कारणों से बचना। आयु की उदीर्णा काय से होती, कहती अधिक मात्रा में भोजन करने से, या कि अत्यंत अल्प मात्रा में भोजन करने से, या कि परिणामों को संक्लेशित करने से, या कि अनीति करने से, इन सब चीजों से जो है अपने आयु की स्वयं की उदीर्णा होती, इस तरफ ध्यान नहीं जाता अपना। अपने स्वयं के आयु कर्म को आप संभाल करके रखें, दूसरे के आयु को भी कष्ट इन्हीं चीजों से पहुंचता है, स्वयं को भी, इस तरह दोनों प्रकार से बचना चाहिए। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की परिभाषा तो अपन ने बहुत समझी होगी, लेकिन भैया इन 10 प्राणों को अपने भी संभालना, इनको कष्ट नहीं पहुंचाना और दूसरे के भी 10 प्राणों को कष्ट नहीं पहुंचाना। एक इंद्रिय है तो उसके 4 प्राण हैं, और 2 इंद्रिय है तो उसके 6 प्राण हैं, 3 इंद्रिय के 7 हैं, 8-9 ऐसे बढ़ते, कुल मिलाकर के 10 प्राण किसके हैं? संगी पंचेंद्री। इसीलिए कहते कि संगी पंचेंद्री को कष्ट देने में ज्यादा हिंसा है, क्योंकि उसके ज्यादा प्राण हैं, उसको ज्यादा सुख दुख का अनुभव होता है, और अपन का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। कल हमने इस बात का ध्यान अपन ने दिला किया था कि देखो चींटी के ऊपर पैर पड़ जावे, किसी कोई जीव राशि अपन से मर जावे, हम देखते हैं कि एक छोटी सी छिपकली आ गई मान लो और अपने सामने कीड़ा खाने लगे, अपन को कैसा लगता? इसमें तो आकुलता होती, इसमें तो ग्लानी होती, और कोई को अपन ने कड़े वचन कह के दुख पहुंचा दिया, इसमें जरा भी आकुलता नहीं है, कैसा अपना हो गया है मन। ये रोज का काम है, इसमें हमें कभी नहीं दूसरे को संगी पंचेंद्री को कष्ट हमारे वचन से पहुंच जाए, क्रियाओं से पहुंच जाए, मन ही मन किसी को कष्ट पहुंचा दे में उसका ध्यान नहीं जाता। वो कोनो छोटो मोटो जीव मर जावे एकदम जो है ऐसे के जैसे इनसे ज्यादा कोई अहिंसक ही नहीं हुए, हाँ ऐसा नहीं लगने लगता। थोड़ी चिटिया, अरे तुमने चिटिया मार दी, चिटिया मार दी मनो वो को इतने जोर से डांट दो कि वो के प्राण तो बिल्कुल सक पका के रह गए, चिटिया सो मरी, मगर आपने उसको चिटिया मरने की वजह से इतने जोर से डांट दिया कि उसके परिणाम अकल विकल हो गए, वो संगी पंचेंद्री घबरा गया बिल्कुल, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। ये भी ध्यान देने की चीज है, अपने और दूसरे के प्राणों का मन वचन काय से घात नहीं। आज वही अपन पढ़ते हैं, हिंसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बहुत व्यापक है। मन वचन काय की क्रियाएं निरंतर हमें हिंसा की तरफ ही ले जाती हैं, बहुत संभालने की आवश्यकता है। श्रावक कितना कर सकता है, उसको कहा है कि श्रावक कितना करे। एक श्लोक है, संकल्पात्कृत कारित, संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगयस्त्रयस्य चर सत्वान, मनना मननात योग त्रयस्य है, एक्चुअली वो इकट्ठा होकर के ऐसा हो। नहि नस्ति यत् दाहु स्थूल वधाद विरमणम निपुणा। यहां पर भी ऐसा ही करना, स्थूल वधाद और विरमणम, द्विरमणम नहीं है वो, विरमणम है दा इधर लेना व उधर। अब फिर से पढ़ते हैं अपन, संकल्पात्कृत कारित मननाद्योग त्रयस्त चर सत्वान नहि नस्ति यत् दाहु स्थूल वदाद् विरमणम् निपुणा। थोड़ा कठिन है, 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो बनेगा। संकल्पात अर्थात संकल्प करके, कृतकारित अनुमननाद योग त्रयस्य, कृतकारित अनुमोदना और मन वचन काय, कितने प्रकार का हो गया, 9 कोटि की शुद्धि यही कहलाती है। मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, तीनों को 3 से गुणा करो तो 9 प्रकार से हो जाएगा। कहते इन 9 प्रकार से चर सत्वान अर्थात जो जीवधारी, जो जीवन धारण करने वाले सत्व अर्थात जीव हैं, उनके लिए यहां पर चर का अर्थ अगर अपन ऐसा भी ले लें त्रस जीवों को तो और ज्यादा, क्योंकि छेठाला में लिखा ना, त्रस हिंसा को त्याग और व्यथा थावर न सहारे। त्रस जीवों का तो घात करेगा नहीं श्रावक,
और स्थावर जीवों का उसके द्वारा घात होगा तो उसमें भी संभाल के वो कार्य करेगा जिससे कि एक इंद्रिय जीव का भी घात न होवे। पर त्रस जीवों का, तो त्रस जीव किसे कहते भैया? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रस कहलाते, एक इंद्रिय जीव सब स्थावर कहलाते हैं। तो त्रस जीवों के लिए विशेष रूप से संकल्प पूर्वक इरादा करके विद इंटेंशन मैं इसे मारूं, ऐसे वचन भी नहीं, ऐसा मन में विचार भी नहीं और ऐसी शरीर से क्रिया भी नहीं, मैं तो नहीं मारूं, पर ये कोई मारे तो अच्छा रहे, या कि कोई मारता है तो ठीक है। जैसे कि आजकल के लोग ऐसा तर्क करने लगे हैं कि अरे पशुओं को ने मार हैं तो संख्या ने बढ़ जाए उनकी, फिर अपन कहाँ रहे हैं, बेई बेई हो जाए। तो ऐसा ये उल्टा काम है। इसी से मालूम पड़ता कि आपके भीतर मन ही मन हिंसा का कैसा विचार चल रहा है। ऐसा प्रश्न करने से ही मालूम पड़ जाता कि अरे इनके मन में बड़ा अभी हिंसा हिंसा का जरा भी विवेक नहीं है, इनने मन से तो उसको मारने की कर ही ली। जैसे कि किसी का पुतला जला देते हैं और हजार आदमी देखते और उसका आनंद लेते हैं, ये सब क्या है भैया, ये हिंसा का काम है। अपन आज इस बात को समझें कि हिंसा कैसे होती है। देखो पूरा अर्थ इसका कर लें, नहीं नस्ति यत्त दाहु स्थूल वदाद विम्रवणम निपुणा। जो प्रकार से मन वचन काय से कृतकार्य तन्मोदना से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों को नहीं मारता है उसे निपुणा। कौन है निपुण अहिंसा में? तो भगवान ही है। तो वे भगवान उसके लिए स्थूल वदाद विरमणम आहु अर्थात स्थूल रूप से हिंसा का त्याग करने वाला अहिंसानुव्रति कहते हैं। अहिंसानुव्रति कौन है? जिसने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग कर दिया। स्थूल हिंसा कौन सी है भैया? तो त्रस जीवों का। अपन एक चीज समझें, बहुत इंटरेस्टिंग है वो चीज, कि कई बार होता है कि कर्ता एक है और उसका फल अनेक भोगते हैं। ये पाप ऐसे ही हैं, एक व्यक्ति हिंसा करता है और भोगते उसका फल अनेक हैं। ऐसा कैसे हो सकता कि एक करे अनेक लोग भोगें? कहते होता है, ये लोग जो पशु पक्षियों को लड़वा करके उनकी लड़ाई दिखाते हैं बाजार में और अपन खड़े हो जाते हैं, इतना ठट्ट लगा करके खड़े हो गए, सब देख रहे और आनंद ले रहे, वे तो लड़के और उनके परिणाम बिगड़ते और अपन अपने उनमें आनंद ले रहे। तो कहते कर तो एक रहा है और भोगेंगे इसका फल अनेक लोग भोगेंगे। और फिर कहते कि करें अनेक और भोगे एक, ऐसा हो सकता है कि? ऐसा भी होता है, कर्ता करते अनेक हैं और फल भोगता है एक। जैसे कि सैनिक तो लड़ते हैं और फल किसको मिलता? राजा को, जिसने लड़वाया है उसको। जैसे कि शादी ब्याह में सबरे बराती तो कर रहे तैयारी, नौकर चाकर कर रहे तैयारी, मनो बैठो को है जो करवा विवाह है, जो उनको ब्याह हो रहा वो सेवन तो बिना सेवई असेव मानो विसेव गो कोई पगरण चेठा कस सभी नया पायरण सो होई। समय सारजी में लिखा है कि सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है। जैसे कि कोई विवाह में बैठा हुआ दूल्हा जिसके माध्यम से सारा प्रपंच रचा जा रहा है, तो करने वाले को उतना पाप नहीं जिसके माध्यम से जिसके लिए किया जा रहा है, और वो आनंद ले रहा क्योंकि उसका कि मेरा विवाह हो रहा है, वो सारा आनंद उसके लिए। तो कहते कि करें अनेक और भोगेगा एक व्यक्ति, ऐसा भी पाप का कार्य होता। फिर कहते करें थोड़ा और भोगे बहुत अधिक। माँ ने गुस्से में आकर के और एक लाठी फेंक के मारी और बेटे को ऐसे लग गई कि उसके प्राण निकल गए। किया तो थोड़ा सा था और भोगना पड़ेगा बहुत बड़ा फल। ये बहुत होता है, करते तो थोड़ा है अपन और कई बार इतनी इंटेंसिटी से हो जाता है कि फल बहुत अधिक भोगना पड़ता है। इसलिए ये भी संभालने की आवश्यकता है। वो कहते करें तो समान और भोगें फल अलग अलग। दो व्यक्ति चार व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, पाप का कार्य देखने में आ रहा है, लेकिन सबका फल उनके अपने भावों की अपेक्षा से मिलेगा, जिसके जैसे भाव होंगे। एक बहुत प्रसिद्ध घटना नहीं सुनी आपने? तीन लोग पत्थर तोड़ रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे तो पहले वाले से जाके कहा कि क्यों भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा दिखता नहीं है पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे वाले से पूछा कि क्यों भाई क्या कर रहे हो? वो भी पत्थर तोड़ रहा था। तो कहने लगे मालिक पेट पाल रहा हूं। उसने क्या जवाब दिया? कि मालिक पेट पाल रहा हूं क्योंकि मजदूरी कर रहा हूं। और तीसरे वाले भी पत्थर तोड़ रहा था, उससे पूछा कि क्या करते हो, वो बहुत खुशी खुशी बोलता है कि मेरा तो सौभाग्य है, मंदिर बना रहा हूं, मंदिर बन रहा है, मैं उसमें मदद कर रहा हूं। देखो पत्थर तीनों तोड़ रहे, एक कह रहा है कि क्या दिखता नहीं तुम्हें पत्थर तोड़ रहा हूं, इसके परिणाम ज्यादा तीव्र हैं, ये पत्थर तोड़ने के साथ साथ अपने परिणामों से ज्यादा फल पाएगा। और दूसरा कहता कि पेट पाल रहा हूं, मजबूरी है, मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, इसको उससे कम है। और तीसरे को तो पुण्य का बंध हो रहा और तोड़ रहा पत्थर, वो कह रहा कि मंदिर बना रहा हूं मैं, उसको पत्थर तोड़ने का तो ख्याल ही नहीं, वो तो मन ही मन विचार कर रहा है कि कैसे मंदिर बनेगा, कैसे भगवान आएंगे, कैसे लोग जो है श्रद्धा से झुकेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके मन में तो यही शुभ विचार चल रहा है। तो इस प्रकार से देखें तो करते तो समान हैं बाहर में, लेकिन जैसे जिसके परिणाम होंगे वैसा फल मिलेगा। ये चार बातें जो है अपन को समझने की हैं कि कई बार एक व्यक्ति करता है फल अनेक भोगते हैं, कई बार अनेक व्यक्ति करते हैं फल एक भोगता है, कई बार थोड़ा करते हैं पाप और ज्यादा फल भोगना पड़ता है, कई बार समान पाप करते हैं फिर भी परिणामों की वजह से कमती ज्यादा। तो कुल मिला के बात क्या हुई भैया, बात यही हुई कि बाहर की क्रिया न देखो, अंदर के परिणाम देखो, जैसे परिणाम उस समय होंगे वैसा ही पाप हमारे लिए बंधेगा, वैसी ही हिंसा और अहिंसा का। तो हम संकल्प पूर्वक कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि हम बिना किसी मतलब के, कई बार तो दिन भर में बिना मतलब के भी बहुत पाप होता है, अगर थोड़ी सी सावधानी हो जावे तो बहुत सारे अज्ञानतावश होने वाला पाप है और प्रमादवश होने वाला पाप है, उस पाप से तो बच ही सकते। अगर थोड़ा सा अपन अपने भीतर थोड़ी सावधानी इस चीज की रखें, व्रती व्यक्ति बड़ी सावधानी रखता है, व्रती का मतलब ही है कि जो अब सावधान हो गया, अब लापरवाही नहीं रही। असयमी का मतलब क्या है, हम तो सीधा अर्थ करते, असयमी मतलब लापरवाह, अपने जीवन की चिंता ही नहीं, अपने जीवन को चाहे जैसा नष्ट करो, तो ये तो असयमी का काम है। सयमी वो है जो अपने जीवन को बहुत सावधानी से जीता है, जैसे कि कोई नई नई कार लेके आता है तो कितनी सावधानी से चलाता कि भैया कहूं भिड़ने जाए, खरोंचने लग जाए, कीचड़ ने उचक जाए नई गाड़ी पे है। जब हम इतना ध्यान रखते तो अपने जीवन की गाड़ी जब चलाएं तो उसमें ऐसा ना हो कि दूसरे को धक्का लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमारी हमारी जीवन की गाड़ी में खरोंचने आ जाए, ऐसा ध्यान रखते क्या? व्रती व्यक्ति होएगा तो जरूर जो है ऐसा ध्यान रखेगा और वो अपने परिणामों को। तो देखो अगर हम पाप से बचते हैं तो क्या होता, हमारे परिणाम सुधरते हैं। और मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, अपने परिणाम सुधार करके इन हिंसा इत्यादि से बचना। इसलिए पहला अहिंसानुव्रत हमें समझ करके और ग्रहण करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्या।